मटके और ढक्कन के बीच में संवाद हुआ। मटका ढक्कन संवाद क्या हो गया? हमने अभी तक मैत्रेय, उद्धव और सुत गोस्वामी, नैमिषारण्य ऋषि संवाद, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद वगैरह बताया है, लेकिन मटका और ढक्कन का संवाद लोग प्रायः इसमें अधिक रुचि लेते हैं। तो एक बार ग्रीष्म काल में ढक्कन ने मटके से कहा कि देखो मटके, इतने महीने हो गए, अप्रैल का महीना गया, मई जून सब निकल गया, तुमने कितने सारे लोगों को पानी पिलाया, तुमने बॉटल को पानी पिलाया, ग्लास को पानी पिलाया, कटोरे को पानी पिलाया, लेकिन मैं आपके इतने निकट बैठा हूं, मुझे एक बूंद नहीं पिलाया। तो मटका कहने लगा, अरे ढक्कन जरा सुनो, ऐसा क्यों? जानो, जितने भी लोग मेरे पास आए वो सब मेरे सामने झुके, मेरे नीचे आए, और तब मैं उनको अपना पानी पिला सका। तू तो मेरे सर पर चढ़कर बैठा है, तुझे कैसे मैं पानी पिला सकता हूं? तो यदि आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो सर पर चढ़कर बैठेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना हो तो नम्र होना पड़ता है। तो इसीलिए केशी मिथ्या अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, जब हमें लगता है कि हम इतने बड़े पंडित हैं कि किसी से मार्गदर्शन की क्या आवश्यकता। तो इसीलिए केशी हमारे हृदय में इस रूप में बैठा है, जब हमें लगता है कि शायद हम अपने मानसिक तर्क वितर्क के आधार पर ही भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवया, सेवा कीजिए। जब तक सेवा नहीं करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं समझ सकते। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। जब हम श्रवण करेंगे तो फिर श्रवण करने के पश्चात नैष्ठिकी भक्ति हमारे हृदय में स्थापित होती है। जब हृदय के अभद्र दूर होते हैं तब। तो इसीलिए सेवा भाव के साथ, नम्र हृदय के साथ श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो यही केशी का प्रतिनिधित्व है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के तात्पर्य के अनुसार। और अंतिम राक्षस जो आए, जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे, वो है व्योमासुर। एक बार भगवान श्री कृष्ण और सारे ग्वाल बाल चोर पुलिस खेल रहे थे। कुछ ग्वाल बाल चोर बन गए, कुछ पुलिस बन गए, कुछ भेड़ बन गए। व्योमासुर आ गया, उसने सोचा सबसे अच्छा रोल कौन सा होगा। उसने कहा चलो चोर बन जाते हैं। चोर बन गए और चोर बनकर धीरे धीरे सारे ग्वाल बालों को चुरा रहे थे। वास्तव में खेल था, लेकिन ये तो वास्तव में चुराने लगे और सीधा जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर डाल दिया और बंदी बना लिया। गोपाल देख रहे हैं कि खेल के आरंभ में इतने लोग थे, अभी खेल जैसा आगे बढ़ रहा है, चार पांच ग्वाल बाल बच रहे, क्या बात है? खेलते खेलते सब कहां गायब हो रहे हैं। तभी गोपाल समझ गए कि हमारे बीच विशेष अतिथि पधारे हैं, व्योमासुर जी, इनका भी वही उपाय करना होगा। ऐसा कहे कि गोपाल जी आए, व्योमासुर के गले को पकड़ा और सीधा उठा के पटक दिया और व्योमासुर की वहीं पे मृत्यु हो गई। भगवान ने कहा चलो इसके साथ अधिक समय नहीं बिताना चाहिए, तुरंत समाप्त करो लीला। बोलो कृष्ण भगवान की। तो व्योमासुर किस अनर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं? हृदय के अंदर जो अनर्थ है वो सभी चोरों के समान है और हमारी भक्ति को चुराने का प्रयास करते हैं, और साथ साथ भक्तों के संग में भी ऐसे कई व्यक्ति हो सकते हैं जो वास्तव में भक्ति नहीं करना चाहते लेकिन हमारे हृदय के भक्ति को चुराना चाहते हैं, व्योमासुर के समान। ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनक कथा। भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि भक्तों के संग में भी कोई भक्तों की वेशभूषा में हमें पथभ्रष्ट करे तो वो व्योमासुर के समान है। इसीलिए हमें नित्य सतर्क रहना चाहिए कि हम भक्ति मार्ग में किस दिशा में जा रहे हैं। तो भक्तों के संग में भी हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो प्रामाणिक रूप से भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, सारे नियमों का पालन कर रहे हो। इस प्रकार हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और व्योमासुर जैसे अलग अलग प्रकार के अनर्थों से हम दूर रह सकते हैं। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने व्रज भूमि में जितने भी राक्षस आए उनका वध किया, जिसके विषय में हमने अभी तक चर्चा की। और ये सारे अनर्थ हमारे हृदय में बैठे हैं और इन लीलाओं का जिन्होंने श्रवण किया श्रद्धा पूर्वक, हृदय में बैठी ये सारे अनर्थ उसी प्रमाण में दूर होंगे जिस प्रमाण में हमारी श्रद्धा हो इन कथाओं के प्रति। तो इसीलिए कृष्ण कथा के श्रवण से शुद्धिकरण होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का प्रयोजन क्या है? शुद्धिकरण, मनोरंजन नहीं। यहाँ हम किस लिए उपस्थित हुए हैं? मनोरंजन के लिए नहीं, शुद्धिकरण के लिए। जब हम श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं तो मनोरंजन के लिए नहीं, शुद्धिकरण के लिए। तो लोग वास्तव में भौतिक जगत में मनोरंजन अधिक चाहते हैं, इसीलिए अलग अलग मैगजीन और न्यूज़पेपरों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं, भागवत के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप बोलो कि हम आपको स्टार डस्ट देंगे तो सब भागेंगे लेने के लिए। क्यों भाई, स्टार्स के डस्ट लेंगे अपने सर पर? लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का डस्ट हम बांट रहे हैं भागवत के रूप में, कितने लोग आकर्षित होते हैं? यहाँ पर तो बहुत लोग हैं, लेकिन देखा जाए तो बंबई शहर की जनसंख्या क्या है और कितने लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यारा कहो तारक हो, यारा देखे तारक हो कृष्ण उपदेश। हम सभी का ये उत्तरदायित्व है, इस भागवत को सुनने की फीस क्या है? इस भागवत और गीता को सुनने की फीस है कि यही ज्ञान आप दूसरों में बांटो, निडर होकर बांटो, चिंता मत करो, दूसरों को ये ज्ञान दो। इसके माध्यम से आप इस फीस को अदा कर सकते हैं। आप किसी को भागवत सुनाना आरंभ करो, जो भी आपने इन 10 दिनों में सुना है, 11 दिनों में सुना है, दूसरों को सुनाओ। दूसरे कहेंगे हम सुनने के इच्छुक नहीं हैं, आपको हम सुनाने के इच्छुक हैं, सुनाओ उनको, उससे उनका शुद्धिकरण होगा और आपका भी भला होगा, आपके हृदय का भी शुद्धिकरण होगा। तो इसीलिए प्रचार करना बहुत आवश्यक है। और यदि हम इस ज्ञान का प्रचार करें तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कंजूस न बनो, दिल खोल कर बांटो इस ज्ञान को। इसे बांटने में आपके हृदय में कोई कमी नहीं होगी। ये धन के समान नहीं है, जेब में 100 रुपए थे, 50 दिए तो 50 बचे नहीं। यहाँ 100 रुपए जेब में है, आध्यात्मिक ज्ञान का 100 दो तो जेब में 200 आ जाता है। ये तिजोरी ऐसी चलती है, इसीलिए ये
हरी बोल।
तो ये मनोरंजन नहीं है, ये भागवत शुद्धिकरण के लिए है। आप कृपा करके ताली वगैरह मत बजाओ, बड़ा अजीब लगता है। ये शो नहीं चल रहा, ये भागवत का प्रवचन चल रहा है। तो कृपा करके जानिए कि ये ज्ञान दूसरों को देना आवश्यक है, इसीलिए शर्माइए मत। एक बार एक भक्त को पूछा गया कि आप लोगों से मिलने वगैरह जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, तो फिर उनकी बातें होती हैं, तो आप कैसे बचते हो? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जैसे ही कोई सामने आकर बातें करने लगता है, मैं उसको प्रचार करना आरंभ कर देता हूं। लेकिन उससे क्या होगा? दो बातें होंगी, एक या तो हमारी बात सुनेगा तो भक्त बन जाएगा, और मान लो वो हमारी बात से पूरी तरह सहमत नहीं है, अगली बार किसी दूसरी पार्टी में देखा तो दूर भाग जाएगा, पास आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है यदि इसके निकट जाओ तो कम से कम 3 घंटा पकड़ेगा हमको, छोड़ेगा नहीं, सारी बातें बताएगा। तो इसीलिए भगवान के संदेश का प्रचार करना बहुत आवश्यक है, और ये ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया है। कहा है कि भारत भूमि में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उनका कर्तव्य है कि इस भागवत को समझें और दूसरों में बांटें। तो अभी श्रीनाथ जी प्रभु की कृपा से यहाँ पर इतना सुंदर भागवत के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो जो कुछ भी आपने सुना है, चाहे तो भागवत से पढ़ो, लेकिन दूसरों को दो। इससे आप भगवान के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवाएं आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी भागवत ज्ञान यज्ञ में आपके हृदय का परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा है, हृदय के परिवर्तन के लिए हो रहा है। तो इसीलिए इस ज्ञान को गंभीरता से स्वीकार करें और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। भागवत ज्ञान को समझने का यही अंततः निष्कर्ष है। तो आज के लिए जो अंतिम लीला थी वो है गोवर्धन लीला, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे कल। बोलिए कृष्ण भगवान की, वृंदावन धाम की, श्रीला प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की, निताय गौर परमानंद। तो सभी उपस्थित भक्तजनों का श्रीमद् भागवत के इस पारायण के 10वें दिन हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज और सभी भक्तों की कृपा से इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के 10 दिन आज पूरे हो रहे हैं। कल अंतिम दिन होगा और आखिरी दिन हम कुछ प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो इसके लिए जो भक्त इस 10 दिन 11 दिन में जितने भी चर्चा के विषय थे उन पर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो अवश्य पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वो हैं जिन्हें ब्रह्म रुद्र और अन्य देवतागण भी अपनी तपस्याओं के पश्चात नहीं जान पाते। वेदे सांग पदक्रमोपनिषद गायंतियम सामगा, और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हर वेद शास्त्र में अनेक सुंदर श्लोकों के माध्यम से की गई है। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अचिंत्य हैं, उनके लीला शक्ति को कोई नहीं समझ पाता। ब्रह्मा शिव जैसे महान महान देवतागण भी भ्रमित रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि अनंत होने पर भी वो अपने भक्तों को अपनी असीम कृपा के माध्यम से अपना दर्शन देने की अनुमति देते हैं। इसीलिए कहते हैं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, जो भगवान के भक्त हैं योगी हैं वो भगवान की सेवा के फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के अंतःकरण में देखते हैं। यस्यांतम न विदुः सुरा सुरगणा, जिस भगवान श्री कृष्ण के आरंभ को और अंत को, यस्यांतम न विदुः, भगवान श्री कृष्ण का आरंभ कहाँ होता है अंत कहाँ होता है ये कोई नहीं जान सकता। देवाय तस्मै नमः, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो अनंत है, जिनके अनंत नाम है, जिनकी अनंत लीलाएं हैं, जिनके अनंत गुण है, ऐसे अनंत श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम अपना दंडवत प्रणाम अर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, नमे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम मादिर्हि देवानाम महर्षिनाम च सर्वश, कि अर्जुन तुम जान लो कि भले ही मैं तुम्हारे इतने निकट के साथ संबंध कर रहा हूँ और आप मेरे साथ साखे रस में संबंधित हो, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं जान सकते, क्योंकि बड़े बड़े देवतागण भी मेरे गुणों को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते, क्योंकि देवतागण भी अणु है, मैं विभू हूँ। प्रभवम न महर्षि, बड़े बड़े महर्षिगण अपने योग और तप के प्रभाव से भी मुझे नहीं जान पाते। अहम आदिर ही देवानाम, इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण सबके स्रोत हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं जन्मादियस्य यत, भगवान श्री कृष्ण ही सबके स्रोत हैं। यस्यांतम न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः, तो सारे देवतागण भी अपनी समस्त शक्तियों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेते हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के पीछे एक देवता नियंत्रण कर रहा है। हम अपना हाथ कब उठाते हैं? जब हाथ को नियंत्रित करता हुआ देवता हमें अनुमति देता है, और जब वो देवता हमें अनुमति न दे हमें पैरालिसिस हो जाएगा और हम अपने हाथ को भी नहीं उठा पाएंगे। हम अपने आंखों को खोल और बंद कैसे कर पाते हैं? क्योंकि इसके पीछे एक देवता का नियंत्रण है, और वो जब हमें अनुमति देते हैं तब हम अपने आंखों को खोल पाते हैं और बंद कर पाते हैं। यदि वो देवता अपनी शक्ति पीछे हटा ले तो हम आंखों के साथ देख भी नहीं पाएंगे। हम पूरी तरह देवताओं के ऊपर निर्भर हैं अपने शरीर के प्रत्येक कार्य के लिए। हमारा पेट, हमारे पैर, हमारा सर, हमारा दिमाग, प्रत्येक शरीर के अंग के पीछे एक देवता का नियंत्रण है। तो सोचिए, जो देवता 14 लोकों के प्रत्येक कार्य का नियंत्रण कर रहे हैं, जिनकी शक्ति हमारी तुलना में असीमित है, अनंत है, ऐसे देवता भगवान श्री कृष्ण की किन शब्दों में स्तुति कर रहे हैं? यस्यांतम न विदुः सुरा सुरगणा, ब्रह्मा जी और शिव जी जो 14 लोकों में सबसे शक्तिशाली देवतागण हैं, वो भी नहीं जान पाते कि भगवान श्री कृष्ण कौन हैं, उनके गुण कितने हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों की संख्या नहीं की जा सकती, भगवान श्री कृष्ण अचिंत्य हैं, तो फिर इतनी चर्चाएं क्यों कर रहे हैं हम? यदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में जाना नहीं जा सकता तो उनके विषय में हम चर्चाएं क्यों कर रहे हैं, श्रवण और कीर्तन क्यों कर रहे हैं? ये बहुत मुख्य बात है जानना। गीता में भगवान कहते हैं, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे भक्तगण नित्य 24 घंटे प्रत्येक क्षण मेरी लीलाओं का चर्चा करते हैं। मच्चित्त, मत गत प्राण, अपने हृदय के अंतःकरण में कृष्ण ही निवास करते हैं भगवान के भक्तों के। तो इसलिए जो हृदय में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं तो जो चर्चाएं होती हैं भक्तों की वो भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होती है। कथयन्तश्चु माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चाएं क्यों करते हैं? इसीलिए नहीं कि चर्चा करके हम भगवान श्री कृष्ण के आदि और अंत को समझ जाएं। चर्चा इसलिए नहीं करते जिससे हम भगवान श्री कृष्ण की सीमाओं को जान ले, पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को समझ ले। चर्चा का उद्देश्य ये नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसी के द्वारा नहीं जाने जा सकते। यहां तक कि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने ही गुणों को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। तो चर्चा का उद्देश्य क्या है? मच्चित्त मदगता प्राण बोधयंतस परस्परम, एक दूसरे को हम कृष्ण कथा सुना रहे हैं। क्यों? कथयन्तश्चु माम नित्यम, इस तरह नित्य कृष्ण कथा करने से हमारे हृदय में किस प्रकार का अनुभव होता है? तुष्यन्ति च रमन्ति च, हमारा हृदय संतुष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करके हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, हृदय में और कोई इच्छा नहीं रह जाती। तो कृष्ण कथा का उद्देश्य है कि हम और कृष्ण कथा सुने। कृष्ण कथा का अन्य दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कृष्ण कथा का श्रवण करने मात्र से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं, तथापि कीर्तियामंग यथामति यथाश्रुतम कीर्तिम हरेर स्वाम सत्कर्तुम गिरम अन्याभिदासतिम। कि विदुर जी, हम आपको भगवान श्री कृष्ण के विषय में बता रहे हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि हम अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझते आपको बता रहे हैं। नहीं, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तो बहुत ही सीमित व्यक्ति हूं जिसकी बुद्धि भी बहुत सीमित है। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को, यथामति यथाश्रुतम, जहां तक मेरी बुद्धि मुझे अनुमति देती है उस हद तक मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने का एक तुच्छ और नम्र प्रयास करता हूं। यथामति और यथाश्रुतम, यथाश्रुतम का तात्पर्य क्या है? यथाश्रुतम का तात्पर्य है कि गुरु महाराज और परंपरा में जितने भी महान आचार्यों ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर शब्दों में जो स्तुति की है, उन सभी वर्णनों को तो फिर से दोहराना संभव नहीं, लेकिन जहां तक मैंने श्रवण किया है और जहां तक मैंने अपने हृदय में उसका साक्षात्कार किया है, उस हद तक मैं इन लीलाओं का कीर्तन आपको करूंगा, जिससे कीर्तिम हरेर स्वाम सत्कर्तुम, जिससे मेरे हृदय का शुद्धिकरण हो। कीर्तिम हरेर स्वाम सत्कर्तुम, जब मैं अपने जिह्वा का प्रयोग कृष्ण कथा में लगाता हूं तो मेरी जिह्वा धीरे धीरे मन के शुद्धिकरण में अपना सहयोग देती है। गिरम अन्याभिदा असतिम, और यदि मैं अपनी जिह्वा का प्रयोग कृष्ण कथा में नहीं लगाऊं तो जिह्वा अलग अलग विषय वस्तुओं का कीर्तन करने लगती है और उससे क्या होता है, वैश्या प्रवृत्ति, मेरी जिह्वा वैश्या के समान बन जाती है। जिस प्रकार वैश्या प्रत्येक दिन अलग अलग ग्राहकों को ढूंढती है केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, उसी तरह मेरी जिह्वा भी अलग अलग विषयों के बारे में चर्चाएं करेंगी केवल मन की इंद्र तृप्ति के लिए। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यतामात्मतत्वं गृहेषु गृहमेदिनाम। श्रवण और कीर्तन के लिए तो अनेक विषय हैं, लेकिन जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा नहीं करेंगे तब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इंद्र तृप्ति या इंद्रिय निग्रह? ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं, नायम देहो नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हति विड भुजाम ये तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धेति अस्मात् ब्रह्म सौख्यं तु अनंतम। कि मेरे प्रिय पुत्रों, कृपा करके मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। 84 लाख योनियों में बुरी तरह पिटने के बाद अभी आप मनुष्य जीवन प्राप्त किए हो। क्षुत परीतो यथा दीन सारमेयो गृहम गृहम चरण विंदन्ति अदिष्टम दंडम ओदनमेव वा। बताया जाता है कि हमारी आत्मा एक कुत्ते की तरह है। वो कैसे, आप कहोगे गालियां दे रहे हो, कुत्ता कैसे है? क्षुत परीतो यथा दीन, क्षुत परीतो अर्थात भूख के वशीभूत, भूख से प्रेरित। जब व्यक्ति को भूख लगती है तो वो पागल सा होता है। और सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस बात के विषय में वो सोचता नहीं। तो जब कुत्ता भूखा होता है वो तो बहुत पागल हो जाता है। क्षुत परीतो यथा दीन, एक दीन दुखी सड़क का कुत्ता जिसका कोई स्वामी नहीं, जिसके गले में कोई पट्टा नहीं, जो नित्य डरा हुआ रहता है कि कब म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आ जाए और मुझे पकड़ के ले जाए, ऐसा घबराया हुआ भूखा कुत्ता रास्ते में जब भूख लगती है तो क्या करता है, क्षुत परीतो यथा दीन सारमेयो गृहम गृहम। अलग अलग घरों में अलग अलग लोगों के सामने जाकर अपनी जिह्वा को मुंह के बाहर निकालकर प्रतीक्षा करता है कि कुछ तो मुझे दे दो, एक चपाती दे दो, कुछ तो मुझे दे दो, मैं इतना भूखा हूं, आप जो भी दोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। क्षुत परीतो यथा दीन सारमेयो गृहम गृहम, हर घर पे जाता है, एक घर पे जाता है, भौंकता है तो घर वाले कुछ कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं, एक आध चपाती फेंक देते हैं। दूसरे घर में जाता है, भौंकता है, हो सकता है उस दिन भोजन कम पड़ा हो, एक आध व्यक्ति परिवार के सदस्य भूखे हो, कुत्ते को भौंकता हुआ देखकर, भोजन मांगता हुआ देखकर और क्रोधित हो जाते हैं, डंडा लेके आते हैं और उसे डंडा चढ़ा देते हैं। बेचारा कुत्ता भ्रमित हो जाता है, ऐसा क्यों हुआ? चरण विंदन्ति अदिष्टम, क्योंकि उस कुत्ते के नसीब में, उस कुत्ते के दैव में जो लिखा था, उनके कर्मों के अनुसार जो उन्हें प्रारब्ध प्राप्त था उसके अनुसार दंडम ओदनम एव वा। उसे कभी दुख प्राप्त होता है तो कभी सुख, कभी दंडा तो कभी चपाती। तो उसी प्रकार आत्मा भी 84 लाख योनियों में भ्रमण करती हुई ये अपेक्षा कर रहा है कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब कुछ इंद्र तृप्ति से शांति प्राप्त होगी, लेकिन नहीं, कभी दंडम तो कभी ओदनम। इस तरह से 84 लाख योनियों में हमारी यात्रा चलती रही है। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं, कष्टान कामान अर्हति विर्भुजाम ये। सूकरों के समान अब इस मनुष्य जीवन में इंद्र तृप्ति के लिए आसक्त मत रहो मेरे प्रिय पुत्रों। तो आप क्या कीजिए, आप तपस्या कीजिए। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तपस्या के लिए, मनुष्य जीवन का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं मेरे प्रिय पुत्रों। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत। तपस्या किस प्रकार की करो, तपस्या का अर्थ है भविष्य के किसी आनंद के लिए वर्तमान में कष्ट उठाना, दुख उठाना, इंद्र तृप्ति को कम करना। तो तपस्या तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, प्रत्येक योनि में प्रत्येक आत्मा तपस्या कर रही है, लेकिन केवल आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए यह तपस्या चल रही है। बच्चा अपने खेल कूद को छोड़कर स्कूल में क्यों जाता है, इतना कष्ट उठाता है, क्यों? क्योंकि भविष्य की उसकी चिंता है, उसकी नहीं तो कम से कम माता पिता की चिंता है कि भविष्य में मेरा भला हो। तपो दिव्यम, तपस्या करो लेकिन दिव्य तपस्या। पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेति अस्मात्, जिससे हृदय का शुद्धिकरण हो। हृदय का शुद्धिकरण जब होगा तब उससे भला क्या फल प्राप्त होगा। शुद्धेति अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ब्रह्म सुख की अनुभूति होगी, आध्यात्मिक दिव्य सुख हम प्राप्त कर पाएंगे। आनंदमयोभ्यासात्, प्रत्येक व्यक्ति आनंद को ही खोज रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन ये आनंद मिले तो कैसे मिले। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धियेत। जब तक रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हम मुक्त नहीं होते, तब तक इस जीवन में सुख का सपना देखना छोड़ दो। शुद्धियेत यस्मात्, जब तक शुद्धिकरण नहीं होता तो भौतिक दृष्टि से भी हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि सुख हमारे अपने कठोर परिश्रम से नहीं प्राप्त होता। सुख प्राप्त होता है जब पाप हमारे नष्ट होते हैं, और जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तो ऐसी अवस्था में सुख की अनुभूति होती है। शुद्धियेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, और तब हम अनंत सुख का अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या क्या है, कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। कलौ नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है भगवान श्री हरि का नाम नित्य निरंतर 24 घंटे लेते रहना। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ये नहीं कहते तन मना मन मना, भगवान ये नहीं देखते कि आपका शरीर कहां पर लगा हुआ है, ये नहीं देखते कि आपकी इंद्रियां कहां पर सेवित हैं, वो ये देखते हैं कि आपका मन कहां पर है। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सबसे मूलभूत सिद्धांत ये है कि क्या हमने अपने मन के ऊपर नियंत्रण किया है, और यदि मन के ऊपर नियंत्रण किया है तो मन में क्या भगवान श्री कृष्ण के ही विचार हैं 24 घंटे प्रत्येक क्षण। तो नवदा स्थिति में यह संभव नहीं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि आप 24 घंटा मेरा नाम नहीं ले सकते, इसीलिए नियमित रूप से रोज समय निकालकर मेरा नाम लो। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा माला पर नियमित रूप से मेरा नाम लो। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं नियमित रूप से, तब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। और जब तक भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांतों के विषय में ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम नाम अधिक समय तक नहीं ले पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना की है, जिसका श्रवण करके भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के विषय में हम जाने, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति जब हम आकृष्ट होंगे, तो अकस्मात एकाएक हम उनके नाम लेने के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवंति हृत्कर्ण रसायन कथा, कि मेरे भक्तों के संग में बैठकर मेरी लीलाओं का श्रवण करो। ऐसी लीलाओं का श्रवण करोगे तो क्या होगा, तदा राजस्तमो भाव कामलोभादयश्चे चेतयेतेरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। काम क्रोध लोभ रजोगुण तमोगुण के सभी प्रभावों से हम दूर होकर सत्वगुण में स्थित हो सकते हैं, और जब हम सत्वगुण में स्थित होंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत भगवत भक्ति विद्यानं मुक्त संगस्य जायते। जब हम सत्वगुण की स्थिति में आएंगे, एवं प्रसन्न मनसो, तब हम अपने हृदय में प्रसन्नता को अनुभव कर पाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो चर्चा का निष्कर्ष ये है कि भगवान के भक्तों के संग में बैठकर श्रद्धा पूर्वक जब हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे, तो ही हम जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा जीवन में सुख प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि केवल इसी माध्यम से हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण और कीर्तन भक्तों के संग में अति आवश्यक है, और इससे अधिक महत्वपूर्ण जीवन में दूसरा कोई भी कार्य नहीं, दूसरा कोई भी सेवा नहीं। हमें समझना चाहिए कि भक्ति में भी अन्य सभी सेवाओं का अंततः निष्कर्ष ही है कि ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक बैठकर श्रीमद् भागवतम श्रवण कर सकें और भगवान के नाम का कीर्तन कर सकें। श्रवण और कीर्तन यही भक्ति का अंततः निष्कर्ष है, और क्योंकि इस कनिष्ठ अवस्था में हम 24 घंटे ये कार्य नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करते हुए अलग अलग सेवाएं दी हैं, जिससे अपने शरीर को अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाकर हम शुद्ध हो सकें। लेकिन अंततः निष्कर्ष क्या है, हरि कथा का श्रवण और कीर्तन। तो जैसे हमने कल चर्चा की, सप्ताह का अर्थ साल के 7 दिन श्रवण और कीर्तन नहीं करना, सप्ताह का अर्थ है नित्यम भागवत सेवया। सप्ताह के 7ों दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना, साल भर, हर सप्ताह, हर दिन। तो भले ही हम अलग अलग प्रकार के कार्यों में लगे हों, यदि हम किसी बात को महत्व देते हैं तो उसके लिए समय अवश्य निकालते हैं। तो पिछले 10 दिनों में हमने बहुत सी कथाएं की, बहुत सी लघु कथा आपको वर्णन किया है, और बहुत सी बातें बताई हैं श्रीमद् भागवत के अलग अलग स्कंदों से, और इसमें बड़ा आनंद आया। लेकिन श्रीमद् भागवत के कथा का अंततः निष्कर्ष क्या है, कुछ क्षणिक आनंद नहीं, मनोरंजन नहीं, लेकिन हमें इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के पश्चात स्वयं से ये प्रश्न करना चाहिए कि मुझे जीवन में करना क्या है, जिस दिशा में मेरी जीवन जा रही है क्या उसी दिशा में मैं चलता जाना चाहता हूं, या मैं अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन को कुछ महत्व देना चाहता हूं। क्या मैंने ये 10 दिन जो भी कथाओं का श्रवण किया केवल मनोरंजन के तौर पर था, या वास्तव में मैं अपने जीवन में कुछ विशेष भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 10 दिन की हरिकथा के श्रवण और कीर्तन के पश्चात काम की बातें करनी चाहिए। वो ये कि हमें अपने जीवन में भक्ति मार्ग को बहुत अधिक महत्व देना चाहिए, और महत्व देने का अर्थ ये है कि हमें उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, और ऐसे मार्गदर्शन को प्राप्त कर हम भगवान के भक्तों के संग में आए। प्रतिदिन नहीं आ सकते तो हफ्ते में कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो पूरे मुंबई शहर में हमारे कई सत्संग कार्यक्रम होते हैं, और ऐसे सत्संग कार्यक्रम में आप सभी आ सकते हैं। हमारा मंदिर श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर बिल्कुल पीछे ही है, हर रविवार को बुधवार को वहां पर इसी प्रकार के भागवत पर चर्चाएं होती हैं। कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है तो अस्पताल में जाकर अस्पताल के सुंदर बिल्डिंग को नहीं देखने जाता, अस्पताल में जाता है कि डॉक्टरों को मिलकर उनसे दवा लें। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति मंदिर जाए या हरि कथा सुने तो वहां के वातावरण को निहारने के लिए नहीं जाता, वहां पर इसलिए जाता है जिससे हृदय के अंदर जो रोग है उस रोग के लिए कोई उचित दवा प्राप्त कर सकूं, और कोई प्रामाणिक डॉक्टर से हम दवा ग्रहण करें तो उस दवा को लाकर सुंदर शेल्फ में रखकर सजाते नहीं, उस दवा को हम खोलते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, तब जाकर बीमारी दूर होती है। तो हम आप सभी से बहुत नम्र निवेदन करते हैं कि कृपा करके इस भक्ति मार्ग को अपने जीवन में बहुत महत्व दीजिए। श्रीमद् भागवत का श्रवण हम इसलिए करते हैं जिससे हृदय का शुद्धिकरण हो, और धीरे धीरे अंततः हम उसी गति को प्राप्त कर सकें जो परीक्षित महाराज ने प्राप्त की। ये कोई कथाओं का सम्मेलन नहीं चल रहा है, हम इन कथाओं के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि उस शिक्षा को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बड़ी गंभीरता के साथ आपको मनन करना है कि क्या इन कथाओं के माध्यम से जो भी शिक्षाएं मैंने प्राप्त की हैं, क्या मैं उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार रहा हूं। जिस गंभीरता के साथ परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के समक्ष श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, क्या वैसी गंभीरता का आदर्श रखकर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। ये मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और हमें भी यही प्रश्न करने चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। कलयुग है, और कलयुग में पता नहीं हर क्षण कितनी ही दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए समय बहुत कम है। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान की कृपा से हमारा संग यहाँ पर हुआ है, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि ये तो बस मेरे जीवन में भक्ति मार्ग को पूर्ण रूप से अपने जीवन में महत्व देने की एक शुरुआत है, ये तो बस एक पहला कदम है, और आगे चल के मुझे भक्ति मार्ग में इतनी रुचि लेनी चाहिए कि एक दिन अंततः मैं भगवत धाम जा सकूं। तो हमारे संपूर्ण श्रीमद् भागवत के श्रवण और कीर्तन और ये श्रीमद् भागवत परायण करने का यही उद्देश्य है कि आपको इस विषय वस्तु की गंभीरता के बारे में बता सकें। तो हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि श्रीमद् भागवत रोज पढ़िए, इनके अंदर जो प्रभुपाद जी ने सुंदर तात्पर्य लिखे हैं उनको बहुत गंभीरता के साथ समझने का प्रयास कीजिए। केवल कथा के आधार पर मनोरंजन के तौर पर मत पढ़िए, इन कथाओं से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारे हृदय में इतनी शांति, इतने सुख, इतने संतोष का हम अनुभव करेंगे कि जीवन में अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस श्रीमद् भागवत के अंदर हमारे सभी इच्छाओं की पूर्ण रूप से संतुष्टि करने की शक्ति है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में बहुत महत्व दीजिए, तभी आप कह सकते हो कि इस कथा यज्ञ से आपको कोई लाभ मिला। तो इतना चर्चा करने के पश्चात हम आज के विषय पर कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमने सोचा कि कथा कल समाप्त होने वाली है, तो फिर इस विषय में चर्चा शायद कर पाए या नहीं। तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला के विषय में। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन धारी की जय। तो भगवान श्री कृष्ण जब छोटे से ग्वाल बाल के रूप में थे, तो उन्होंने एक दिन देखा कि नंद महाराज एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो गोपाल ने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, आप ये किस प्रकार के यज्ञ की तैयारियों में संलग्न हैं? तो उनके पिताजी ने कहा कि देखो गोपाल, जो भी वर्षा होती है उस वर्षा के आधार पर पूरे वृंदावन में हरियाली छाती है, और जब घास ठीक प्रकार से उगते हैं तो हमारे गाय उन घास को खाते हैं, और उसके माध्यम से हम गायों से दूध निकालकर अपना जीवन निर्वाह।